हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रिसेप्शन का वेन्यू अलग रखा गया था, वो राणा मेंशन में नहीं होने वाला था। रिसेप्शन की तैयारियां देखने के लिए विशाल प्रतीक्षा के साथ वेन्यू पर गए हुए थे। विराट और मान्या भी वहीं पर मौजूद थे, बाकी की फैमिली घर पर थी। इन सब के बीच सिंघानिया फैमिली मुंबई पहुंच चुकी थी। उनकी गाड़ी सीधी राणा मेंशन की तरफ जा रही थी। जैसे ही गाड़ियां अंदर आने को हुई, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। योग हेड सिक्योरिटी मैनेजर के साथ कॉल पर था। सर, एक बड़ी गाड़ी है जिसके आगे और पीछे दो दो गाड़ियां और हैं। आई थिंक उनमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। आर यू श्योर कि ये अटैक नहीं करेंगे? उनको अंदर एंट्री देने से पहले हेड मैनेजर ने योग से पूछा। वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सबसे प्रेशियस चीज़ मेरे पास है। डोंट वरी, उन्हें अंदर आने दो, युग ने जवाब दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। युग अपने फ्लोर की बालकनी में खड़ा था और गाड़ियों को अंदर आते हुए देख रहा था। लगभग 5 के करीब गाड़ियां अंदर आईं। युग ने नीचे की तरफ देखकर कहा, वेलकम डियर इन लॉज, आराम से रिसेप्शन अटेंड कीजिए और बिना किसी तमाशे के चल जाइएगा, वरना आपके चक्कर में मेरी वाइफ को तकलीफ हो सकती है। बोलते हुए युग के चेहरे के भाव सर्द थे। युग को इस बारे में पहले ही पता था, लेकिन उसने हर्षवर्धन जी को कुछ नहीं बताया था। वो लोग अंदर पहुंचते उससे पहले युग तेज कदमों से चलकर लिफ्ट की तरफ गया और उनके वेलकम के लिए तुरंत ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। वहीं आदित्य सिंघानिया, अमृता और अर्जुन भी अंदर आ चुके थे। जैसे ही हर्षवर्धन जी और आदित्य जी की आंखें आपस में मिली, दोनों के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। हर्षवर्धन जी ने युग की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता होगा कि ये लोग आ रहे हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज दादू, युग ने सिर हिलाकर जवाब देते हुए कहा, मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था, एंड आई लव सरप्राइजेस। युग काफी सस्पिशियस तरीके से बात कर रहा था। युग को देखते ही अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी युग ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोकने के लिए कहा, जहां हो वहीं पर रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ मुझे टच करो और मैं उसकी ऐसी हालत करूं कि वो चल भी ना पाए। बोलते हुए युग की आंखें सर्द हो गईं। युग की बात सुनकर अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। वो गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम जैसे इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इनफैक्ट तुम्हारे लिए तो इंसान वर्ड कहना ही गलत होगा। मेरी बहन कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त वो वापस चाहिए। मेरी वाइफ कृषा राणा इस वक्त आराम कर रही है, बाकी तुम्हारी बहन कौन है मैं नहीं जानता, युग ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त शब्दों में कहा। युग जिस तरीके से सिंघानियास को हैंडल कर रहा था, वो देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उन्होंने आदित्य की तरफ देखकर कहा, चलो, सालों पहले जो रिश्ते जुड़ते जुड़ते रह गए वो अब जुड़ ही गया। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं यहाँ कोई गैंग वॉर छेड़ने नहीं आया हूँ और ना ही कोई पुरानी बातों को लेकर बहस करने। मुझे मेरी पोती इसी वक्त मेरे साथ वापस चाहिए, आदित्य जी ने जवाब दिया। वो काफ़ी शांति से बात कर रहे थे, लेकिन गुस्सा उनकी आंखों से भी साफ छलक रहा था। क्या हम लोग बैठकर बात नहीं कर सकते? आप लोग ऐसे ही दरवाजे पर खड़े होकर आपस में बातों से लड़ाई करते रहोगे तो कैसे चलेगा? अमृता ने मामले को संभालते हुए कहा। अमृता की बात सुनकर हर्षवर्धन ने कहा, बीच में टांग अड़ाने की आदत जाएगी नहीं ना तुम्हारी अमृता? नहीं करनी मुझे तुम लोगों से बात, जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ। मैं कृषा को यहाँ से लेकर जाऊँगा, चाहे फिर यहाँ लाशें ही क्यों ना बिछ जाएं, अर्जुन बोला। युग उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले हरलीन वहां पहुंच चुकी थी। उसे सिंघानियास के वहां आने की खबर मिली थी तो वो दौड़कर वहां आई। उसे वहां देखकर सब अपने आप ही चुप हो गए। वहीं आदित्य सिंघानिया शांत भाव से उसकी तरफ देख रहे थे। हरलीन ने वहां आते ही कहा, प्लीज ये सब मत कीजिए, आप क्या चाहते हैं कि कृषा ये सब सुने और अपसेट हो जाए? अंदर चलते हैं। हरलीन वहां इकलौती ऐसी शख्स थी जिसकी बात वहां मौजूद कोई भी इंसान चाहकर भी नहीं टाल सकता था। उसके कहने पर सब लोग लिविंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे और वहां शांति से बैठकर बात करने के लिए तैयार हो गए। बुआ, हर बार आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया जाता है और आप उठाने भी देती हैं। आई रियली हेट यू फॉर दिस, युग ने हरलीन की तरफ देखकर अपने मन में कहा। उसे उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। वहां बैठते ही आदित्य सिंघानिया ने कहा, अगर तुम्हें याद हो तो कुछ साल पहले हमारे बीच एक डील हुई थी कि हम एक दूसरे के परिवारों से दूर रहेंगे। फिर क्या सोचकर तुम्हारे पोते ने मेरी पोती को किडनैप किया और उससे जबरदस्ती शादी तक कर ली। हर्षवर्धन उनकी बात का कोई जवाब देते उससे पहले बीच में योग बोल पड़ा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उससे जबरदस्ती शादी नहीं की, सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो, कृषा को मुझसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। वो कभी ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करेगी जो माफिया से बिलोंग करता है, उसे नफरत है इस माफिया वर्ल्ड से। अर्जुन तुरंत बोला, कृषा कहाँ है, मुझे बात करनी है उससे। अमृता ने कहा, वही कन्फर्म कर सकती है कि सब उसके साथ जबरदस्ती हुआ या उसकी मर्जी से। बिल्कुल, आप अभी उससे बात करके कन्फर्म कर सकते हैं, मैं उसे लेकर आता हूँ, योग ने जवाब दिया। फिर उसने हरलीन की तरफ देखकर कहा, बुआ आप मेरे साथ आइए, मुझे बात करनी है। हरलीन वहाँ से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी उसके हटते ही उनकी बहस फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन युग ने उसे जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। बाहर आते ही युग ने कहा, मुझे पता था वो लोग आने वाले हैं। ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम्हें पहले से पता था और तुमने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। तुम अच्छे से जानते हो हमारे रिलेशंस कैसे हैं, उसके बावजूद तुमने घर पर आने लिया उन लोगों को, हरलीन ने गुस्से में कहा। हाँ, क्योंकि एक ना एक दिन ये होना ही था, अब वो रिसेप्शन अटेंड करेंगे तो कृषा को भी अच्छा लगेगा। मैंने पहले ही उनके लिए कॉफ़ी तैयार करवा दी है, बाकी अरेंजमेंट आप देख लेना, अगर आप इंसिस्ट करेंगी तो वो मना नहीं करेंगे, युग ने काफ़ी सॉफ्टली कहा, जो कि उसके बोलने का तरीका बिल्कुल नहीं था। युग के बर्ताव से हरलीन को हैरानी हुई, पहली बार वो किसी की खातिरदारी के लिए कुछ कर रहा था। उसने पूछा, क्या सच में तुमने उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाया है? आई डोंट बिलीव यू। हाँ, इसमें इतना हैरान होने जैसा कुछ नहीं है, आप जाइए मैं कृषा को लेकर आता हूँ, युग ने जवाब दिया और वहाँ से कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो जरूरत से ज्यादा नॉर्मली बिहेव कर रहा था। वहीं हरलीन ने युग के बर्ताव के अंदर पॉजिटिव चेंज महसूस किया तो उसे अच्छा लग रहा था। वो किचन एरिया की तरफ जा रही थी, उसे जाते देखा तो युग के फेस पर ईविल स्माइल आ गई। एज आई से इंसान को इतना भी मासूम नहीं होना चाहिए, युग ने सिर हिलाकर कहा और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। युग ने रूम खोला, वो अंदर से लॉक नहीं था, कृषा कमरे में आराम से सो रही थी। उसे देखकर युग के फेस पर ना चाहते हुए भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। काश तुम माफिया प्रिंसेस नहीं होती या मुझे पहले ही इस बात का पता होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अब जो भी होने वाला है उसके लिए तैयार रहना बेबी, बोलते हुए युग कृषा के पास आया और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगा। तभी उसे याद आया कि कुछ देर पहले कृषा ने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो उसकी मर्जी के बिना उसे टच नहीं करेगा। हद है यार, अब मैं इसे कैसे जगाऊं, युग ने सिर हिलाकर कहा और फिर कृषा ने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा था उसे खींच लिया। उसने एसी का टेम्परेचर भी बिल्कुल डाउन कर दिया ताकि कृषा को ठंड लगने लगे और वो उठ जाए।
ठंड लगने की वजह से कृषा खुद में ही सिमट कर सो गई। कृषा अभी भी नहीं जगी थी तो युग ने उसके ऊपर पानी डाला। पानी गिरने की वजह से कृषा हड़बड़ा कर उठी और युग को गुस्से में देख रही थी। ऐसे कौन जगाता है, तुम मुझे नॉर्मली भी तो जगा सकते थे ना, बोलते हुए कृषा उसे शिकायत भरी नजरों से देख रही थी। नॉर्मली जगा सकता था लेकिन तुमने ही कहा था कि मुझे टच नहीं करना है, नॉर्मली जगाने के लिए तुम्हें हाथ लगाना पड़ता और युग राणा अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ता, युग ने जवाब दिया और फिर एसी का टेम्परेचर फिर से बढ़ा दिया। उसने कृषा की तरफ ब्लैंकेट फेंक दिया ताकि वो उसे ओढ़ ले। युग को अपनी केयर करते देखकर कृषा के फेस पर स्माइल आ गई, उसे अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी युग ने कहा, बाहर तुम्हारी फैमिली आई हुई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या सच में तुमने उन्हें हमारी वेडिंग रिसेप्शन के लिए इन्वाइट किया, कृषा ने एक्साइटेड होकर कहा और बाहर जाने लगी। तभी युग उसे रोकने के लिए दरवाजे के आगे आकर खड़ा हो गया। युग ने कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो ये देखने आए हैं कि तुम यहाँ ठीक हो या नहीं, या यूं कहूँ कि तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, कृषा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था दादू मुझे ढूंढ लेंगे और यहाँ से ले जाएंगे, अर्जुन भैया भी आए हैं ना साथ में, वो मुझे कभी किसी तकलीफ में देख ही नहीं सकते, मैं जा रही हूँ उनके पास, बोलते हुए कृषा की आंखें नम होने लगीं। वो काफी समय बाद अपने किसी फैमिली मेंबर को देख रही थी। युग अभी भी दरवाजे से सट कर खड़ा था, वो कृषा को जाने नहीं दे रहा था, तो कृषा ने हैरानी से कहा, प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मुझे उनसे मिलना है। युग बेपरवाही से बोला, मिल लेना, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले अपने कपड़ों की तरफ का देखो, क्या जवाब दोगी उन्हें कि मेरे कपड़े पहनकर सो रही थी तुम, ऐसे ही बाहर गई तो मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो खुद ही समझ जाएंगे कि तुम मेरे साथ कितनी खुश हो, बोलते हुए युग ने तिरछी मुस्कुराहट दी। कृषा ने सिर्फ युग की शर्ट पहनी हुई थी, ऐसे में वो बाहर नहीं जा सकती थी। वो युग का कमरा था, इसलिए जो ड्रेस कृषा ने मुंह दिखाई में पहनी थी उसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। प्लीज मुझे दूसरे कपड़े ला दो, कृषा प्लीडिंग वे में बोली।
जरूर ला दूंगा, आफ्टर ऑल तुम्हें लेने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। पर बाहर जाने से पहले मेरी कुछ बातें गौर से सुन लो। तुम जाकर उन्हें यही कहोगी कि तुम यहाँ बहुत खुश हो और उनके साथ यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, युग ने सख्त आवाज में कहा। युग की बातें सुनकर कृषा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुमने मेरे साथ जो भी किया है उन्हें सब बताऊंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ और मैं वापस जाकर रहूंगी। कृषा ने युग की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उसका ये इनकार युग को गुस्सा दिला रहा था। उसने सर्द लहजे में कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं बल्कि बताया है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कृषा राणा। बाहर तुम्हारी फैमिली को अभी अभी एक कॉफी सर्व हुई है जिसके अंदर स्लो पॉइजन डाला हुआ है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो नेक्स्ट मील में मैं उन्हें एंटीडोट दे दूंगा और उन्हें कुछ नहीं होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। युग की बात सुनकर कृषा लाचारी से उसकी तरफ देख रही थी, तो वहीं युग ने उनके लिए जो पहले से ही कॉफी तैयार कर रखी थी उसका राज यही था। अभी युग की नेगेटिव साइड पूरी तरह आपके सामने नहीं आई। देखना ये डेविल आगे आगे क्या करता है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पर।